ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने एक चीज बोली है कि ये है वंडरफुल बात। कौन सी बात? फर्स्ट पेज एक चीज बाबा ने बोली है, ये है वंडरफुल बात। कौन सी बात? तो बाबा कहते हैं भक्त पुकारते हैं कि दुखों से छुड़ाओ। बाबा को पुकारते हैं, बाबा आ जाओ, देह से मुक्त करो और हमको ले जाओ। और जब बाबा आते हैं और कहते हैं चलो, तो बच्चे क्या कहते हैं, भक्त क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो जो तंदुरुस्त हो जाए। तो ये है वंडरफुल बात। तो हम देख रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इंग्लिश में एक कहावत है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो उसमें एक स्वस्थ मन नहीं रह सकता है। आप देखते होंगे जब बहुत तेज बुखार होता है तो क्या हम योग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हमको बहुत बॉडी एक हो रहा है, पीठ दर्द, सर दर्द या इस तरह की कोई भी बीमारी है, हम एडमिट है, योग करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय। और जब हमको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आप किसी भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को पूछ सकते हैं कि जब उनका बीपी बढ़ जाता है तो योग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बुद्धि ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। तो हम देख रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। कल हमने देखा ब्लड प्रेशर क्या है। रक्त जो बहता है, हमारा जो हार्ट, उसकी जो एक मुट्ठी उसकी साइज है खाली 500 ग्राम का है और सारे शरीर में रक्त को संचारित करता है। तो ये जो रक्त है जब बहता है तो इसका जो दबाव पड़ता है उसकी दीवारों पर, धमनियों के, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमने देखा ब्लड प्रेशर दो प्रकार का है, एक तो सिस्टोलिक ऊपर का और नीचे का। याद है किसी को क्या बोलते हैं नीचे के ब्लड प्रेशर को? डायस्टोलिक। ऊपर का ब्लड प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक, नीचे के ब्लड प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऊपर का हमने देखा कितना नॉर्मल होता है, 120, और नीचे का 80। ठीक है, पहले ये मानते थे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और वो एक्सेप्टेबल है। जैसे किसी के 150 साल की उम्र है तो 150 उसका नॉर्मल है, पर अभी बहुत सारा जो मतलब रिसर्च हुआ है उससे ये पता चला ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने देखा था हमारा ब्लड प्रेशर रहना चाहिए 120 और 80। और जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, कितना, 140 के ऊपर सिस्टोलिक ऊपर का और नीचे का 90 और 90 के ऊपर। तो हमने ये भी देखा था कि विश्व भर में हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है। हमने ये भी देखा था हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ये पता नहीं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है। और हमने देखा था कि हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपना ब्लड प्रेशर 140 और बटा 90 नहीं रख पाता है, उससे ज्यादा ही रहता है उसका, बावजूद इसके कि वो दवाई ले रहा है। तो ये 3 बातें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था इसके प्रकार क्या क्या है। हमने देखा था प्राइमरी, जिसका कोई कारण नहीं पता चलता है, और दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्लड हाइपरटेंशन मींस 5% लोगों में होता है खाली, और जिसका किडनी की बीमारी या अन्य कोई बीमारी होती है शरीर में उसके वजह से होता है, पर मैक्सिमम लोगों को जो ब्लड प्रेशर वो है प्राइमरी या असेंशियल हाइपरटेंशन। उसके हमने कारण कुछ देखे थे। कारणों में हमने क्या क्या देखा था, तो ये पुरुषों में ज्यादा होता है, ब्लैक रेस में ज्यादा होता है, और हमने कुछ दूसरे कारण देखे थे जैसे नमक। नमक के बारे में आज हम वापस थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और हमने कल भी देखा डिटेल में कि कैसे नमक, कुछ दो प्रकार के लोग होते हैं, एक संवेदनशील, जिसको सॉल्ट सेंसिटिव, सॉल्ट इनसेंसिटिव, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो गया तो बीपी बढ़ जाता है और थोड़ा सा भी नमक कम तो वापस बीपी नॉर्मल। तो इस तरह से सॉल्ट सेंसिटिव, सॉल्ट इनसेंसिटिव, दो प्रकार के लोग होते हैं। तो हमने नमक एक देखा था, फिर हमने देखा था तंबाकू है, फिर शराब है, फास्ट फूड्स है, ऐसी मोटापा है, निष्क्रियता है, ये बहुत सारे उसके कारण है, जीन्स एक कारण है। तो ये इस तरह से ब्लड प्रेशर के कई कारण है, हमने ये सब देखे थे कल। उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार से मतलब इसकी इसको मेजर किया जाता है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है स्पिग्मो मैनोमीटर, बीपी का एपरेटस जो बोलते हैं ना उसको कहते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर, उससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। दूसरा एक मेथड है डिजिटल मेथड, और तीसरा एंड्रॉइड। तो कई लोग घर पे भी बीपी अपना नापते हैं। तो हमने उसमें और एक चीज देखी थी, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मतलब डॉक्टर के कमरे में जाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है और घर आते तो बीपी नॉर्मल। एक होता है मास्क हाइपरटेंशन, उसके अपोजिट। एक होता है लेबाइल हाइपरटेंशन। लेबाइल हाइपरटेंशन में ऐसा होता है कि बहुत फ्लक्चुएशन होता है, कम लोगों में होता है पर बीपी बहुत फ्लक्चुएशन होता है उनका, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कभी एकदम लो हो जाता है, तो उनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक होता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, एक गोली फिर गोली का डोज बढ़ाया नहीं कंट्रोल हुआ, दूसरी गोली डाली, तीसरी चौथी पांचवी छह सात आठ नौ, नौ गोलियां। हमारे पास बीपी कंट्रोल के लिए अलग अलग वर्ग की गोलियां है, एक डालेंगे दूसरी डालेंगे डोज बढ़ाएंगे सब मैक्सिमम डोजेस में, उसके बाद भी जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो आता है 160-100। इसको कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। और कभी कभी क्या हो जाता है, मैंने जैसे बताया हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस, चार मुख्य कॉम्प्लिकेशन है, कौन कौन से? सबसे पहले अगर बीपी कंटिन्यूस ज्यादा रहा तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन में होता है स्ट्रोक, फिर और क्या होता है, आंख, रेटिना में हिमरेज हो सकता है, उसकी वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है, रेटाइनल हिमरेज, ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो आंख को असर करता है, ब्रेन को असर करता है, हार्ट को असर करता है और एक किडनी को असर करता है। किडनी को असर करना वो चालू हो जाता है और धीरे धीरे ऐसी नौबत आती है कि एक समय के बाद फिर डायलिसिस करना पड़ता है, दोनों किडनी फेल हो जाती है, तो ऐसा भी पाया गया है। तो ये हाइपरटेंशन के चार मुख्य कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद में कुछ इमरजेंसीज भी है, उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अलग अलग ये टर्म्स है, जिसमें बीपी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आदमी बेहोश हो जाता है या उसके एंड ऑर्गन्स जैसे किडनी डैमेज हो गई, ये जो जो कॉम्प्लिकेशन है, जब कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है तो इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। तो इसको तो आईसीयू में ही मैनेज किया जाता है, लंबा समय लगता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सब बातें हमने कल देखी, फिर हमने थोड़ा सा ये भी देखा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जिनको बीपी है या जिनका बीपी बॉर्डर पे है, या बीपी कितनी बार नापना चाहिए। तो उसमें ब्लड जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमने देखा ब्लड का इन्वेस्टिगेशन है, कोलेस्ट्रॉल करना चाहिए, शुगर करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का बहुत गहरा संबंध है। जो लोगों को डायबिटीज है उनको हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिनको हाइपरटेंशन है उनको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, दोनों का आपस में कनेक्शन है। तीसरी एक बात मोटापा और चौथी कोलेस्ट्रॉल। तो ये चार बातें ऐसी है, चारों का संबंध है, और जब ये चारों बातें एक साथ होती है एक ही व्यक्ति में, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी चीज है कि जिसको रहता है उसको बहुत सारे रिस्क, जितने कॉम्प्लिकेशन मैंने गिनाए वो सब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मैंने बताया हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, कभी थोड़ा बीपी बढ़ जाता है, और फिर हमने ये भी देखा कि बीपी बढ़ने की वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बीपी बढ़ जाने से, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मरीज क्या क्या बताएगा, क्या क्या हो रहा है, जैसे चक्कर आना, पसीना आना, सिर दर्द होना और सांस फूलना, धड़कन बढ़ जाना, थकान होना, नींद ना आना, नाक से खून भी आता है, मैंने कल बताया था ना, इफ यू डोंट ब्लीड थ्रू नोज यू विल ब्लीड थ्रू ब्रेन। तो ये सारे उसके कुछ सिम्टम्स भी हमने कल थोड़ा संक्षिप्त में देखे। उसके बाद में हम डॉक्टर चावला सर ने काफी हमको डिटेल में बताया, पर उनका प्रेजेंटेशन रह गया था तो पहले हम आज उनका प्रेजेंटेशन देखेंगे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कवर कर दी है, आज हम फिर भी इस सेशन के बाद एक 15-20 मिनट का ये प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो जो आपको समस्या है, जैसे नमक के बारे में, तेल के बारे में, कौन सा तेल यूज करना है, कितना यूज करना है, क्या आहार में हम परिवर्तन करें, जीवन शैली को कैसे परिवर्तन करें, क्योंकि मैंने जैसे कल बताया था हाइपरटेंशन क्या एक साइलेंट किलर है, सबको हो सकता है पर ऐसा जरूरी नहीं कि सिम्टम्स कुछ भी नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, तो ये अंदर ही अंदर खोखला करता है हमको, तो ये साइलेंट किलर है। तो ऐसा ये जो जैसे जिसको अभी मतलब नंबर वन किलर कहा गया है, हाइपरटेंशन डायबिटीज दोनों भी, तो हम डिटेल में इसके ट्रीटमेंट के बारे में और आज देखेंगे कि किस किस प्रकार से हम अपने लाइफ में हमारी जीवन शैली है उसको चेंज करें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर चावला सर को, वो आए और अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करें।
प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कल हमने बात किया था कि जो ब्लड प्रेशर है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है, तो माइल्ड को कैसे मैनेज करते हैं, हमने कल इसका जिक्र किया था कि दो तीन रीडिंग ले लेंगे 2-3 हफ्ते के अंदर, यदि ब्लड प्रेशर तीनों रीडिंग्स में हाई आया तो हम आपको लेबल कर देंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसके बारे बाद उसका इलाज शुरू कर देंगे। जो इलाज या तो जीवन शैली परिवर्तन हो सकता है, और अगर उससे फायदा ना हो 3-6 महीने में तो फिर हम गोलियों पे चले जाएंगे। और वो दवा एक बार शुरू हो जाए तो लगभग वो ऐसे मान के चलना चाहिए कि सारी उम्र लेनी पड़ती है। तो इसलिए शुरू करने से पहले ही हम ये कन्फर्म कर लेते हैं कि बिना दवाई के ये चलने वाला नहीं है। तो पहली रीडिंग इसमें मैंने यही कहा है कि 3 रीडिंग्स लेते हैं हम, और फिर टेस्ट करते हैं कि किडनी डैमेज तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं है, ये सारी चीजें देखने के लिए टेस्ट करते हैं हम, और फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, और फिर जाके दवाइयों पे नौबत आती है। हर चीज में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये पहली स्लाइड यही बता रही है, एन औंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ क्योर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपना आशीष भाई यहां पे हैं। आशीष भाई, आज की क्या रिपोर्ट है बताइए जरा। 50-60 लोगों को चेक किया, कितनों का हाई पाया? 5-6 को हाई आया जिनको मालूम नहीं था। तो 50-60 में से 5-6 मतलब 10% लोग हमने ऐसे पकड़े जो कि बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो आपने देखा कि सिंपल सरल तरीका है एक चीज डायग्नोज करने का, नहीं तो कितनी बीमारियां होती, कितने टेस्ट करने पड़ते हैं उनके लिए तब जाके बीमारी का पकड़ में आती है। और इतना सरल, और लेकिन इतनी भयंकर बीमारी इतनी सरलता से पकड़ में आ जाना, ये भी खुदा की कुदरत है। ये देखिए, ये डॉक्टर सचिन ने सारी फोटो डाल रखी है इसमें। सबसे पहले जीवन शैली का परिवर्तन में सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन पे हम काफी बात कर चुके हैं कल, और देबू भाई भी यहां पे थे, हमारा मैसेज उन तक पहुंचाना था, पहुंच गया, और एक WHO का चार्ट भी हमने उन पे पहुंचा दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका डेफिनेटली असर होगा, और आप सबको भी ज्ञान मिल रहा है, और आप अपने स्वास्थ्य के लिए नमक को कम करेंगे। दूसरा, वेट कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पे भी हमने बात करी थी कल। वेट कंट्रोल, आइडियल बॉडी वेट होता है आपकी हाइट के मुताबिक, और वो चार्ट से पता चल जाता है, और हमेशा आइडियल वेट से 5-10% आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आइडियल वेट के अराउंड ही चलना चाहिए। और कल हमने ये भी बात करी थी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, और कम वेट में कितना बॉडी मास इंडेक्स होता है, और ओवरवेट में कितना होता है, ओबेसिटी में कितना होता है, ये एक स्लाइड और आएगी इसके बारे में। और फिर है डाइट वॉच, डाइट वॉच के ऊपर भी 1-2 स्लाइड और आएंगी, और एक्सरसाइज के ऊपर हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, और स्मोकिंग सेसेशन यहां पे कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, अल्कोहल की भी यहां पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की भी शायद यहां पे बात करने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिर योगा, प्राणायाम और ध्यान, इनका बहुत ज्यादा महत्व है, तो इनका महत्व भी हम समझेंगे। सॉल्ट के बारे में हमने कल जाना था, स्टडीज की गई हैं कि सॉल्ट अगर कम किया जाए तो ब्लड प्रेशर यूं कम आता है, और हमने यहां पे एग्जांपल अपने बीच में, अपने मध्य में भी देखे कि नमक कम किया तो ब्लड प्रेशर कम आया, काफी दफे ऐसे देखा जाता है। और कल ये भी बताया था कि नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो कैसे बढ़ाता है, धमनियों की दीवार पे इकट्ठा होके धमनी की दीवार मोटी हो जाती है, तो जो उसकी वॉल्यूम है, ल्यूमन है, वो तंग हो जाती है, तो जैसे पानी को दूर फेंकना हो तो उसको पतली पाइप में से गुजारते हैं तो प्रेशर बड़ा होता है, तो अगर थोड़ा प्रेशर रखना हो तो वाइड बोर में जाता है, तो इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये मैंने लिखा है क्विक इफेक्ट्स ऑफ सॉल्ट रिडक्शन, जो बाबा राम जी का एग्जाम्पल दिया था वो इसमें है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिकमेंड किया है कि 5 ग्राम एक लेवल टी स्पून फुल टेबल स्पूनफुल नहीं जो बड़ा होता है, टी स्पूनफुल, 5 ग्राम हीप्ड नहीं, एकदम लेवल वाला, उसको 5 ग्राम आता आता है उसमें, उससे ज्यादा कदापि नहीं लेना चाहिए पूरे दिन को प्रति व्यक्ति। तो आप देख लीजिए हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कम से कम ऐसा पाया गया है कि 9-10 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो यही वजह है कि हम लोगों में ब्लड प्रेशर अधिक होता है। अच्छा, दूसरी चीज कि नमक जैसे खाने में तो ठीक है, लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें पता भी नहीं चलता कि नमक हम खा रहे हैं। सबसे ज्यादा उसका एग्जांपल है ब्रेड, जो हम ब्रेड खाते हैं उसमें खूब नमक होता है, चीज खाते हैं जो होती है मार्केट की उसमें बहुत नमक होता है, बिस्किट्स में भी नमक होता है, और जो केचप डालते हैं समोसे के साथ खाने के लिए उसमें भी नमक होता है, सॉस होता है उसमें भी नमक होता है, अचार चटनी ये सब हम इतने मजे में से खा जाते हैं, लेकिन उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है नमक, नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसलिए अचार चटनी में उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसलिए हमको ये सब जानना बहुत आवश्यक है। नमक से जो बच गया वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर गया। आहार में शामिल 5-6 ग्राम सोडियम क्लोराइड या 2.6 ग्राम उसमें सोडियम होता है, जो डेंजरस एलिमेंट है वो सोडियम है, तो वो सोडियम 2.6 ग्राम है 5-6 ग्राम में, तो उसकी आधी मात्रा यानी के इतना रखना चाहिए हमको। ये जो इसको ये जो दिखा रहे हैं ऊपर से डालने वाला नमक, उसको कहते हैं टेबल सॉल्ट, ये अगर बाकी खाने में डाला हुआ है तो ऊपर से कम डालें, तो टेबल सॉल्ट भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम क्योंकि खाने में कम डालने वाले हैं तो टेबल के ऊपर एक शीशी रखी रहेगी, जिसको बहुत ही मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, वो थोड़ा बहुत डाल सकता है। WHO रिकमेंड्स ए हेल्दी डाइट कंटेनिंग। अच्छा, दूसरी चीज जो मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, 5-6 पोर्शन सब्जी और फल के प्रतिदिन होने ही चाहिए। सब्जी में जैसे हरी सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फल में सभी प्रकार के फल। फल का क्या लाभ है कि एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दूसरा इसमें पोटेशियम होता है, जो हानि सोडियम करता है वो उसका कंपेंसेशन पोटेशियम करता है, तो फल जो है हमको पोटेशियम देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, और तीसरी चीज जो ये जो देते हैं फाइबर देते हैं, तो फाइबर से जो ग्लूकोज और फैट की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, तो इसलिए हमारा वजन भी ठीक रहता है, और चौथी चीज इंटेस्टाइन्स की मोशन ये करते हैं, तो इससे हमको कब्ज भी नहीं होती है। तो फल और सब्जियों के बहुत ही फायदे हैं, 5-6 पोर्शन दिन में प्रतिदिन लेने ही चाहिए। यहां के खाने में सब्जी होती है सुबह दोपहर शाम होती है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत अगर फल का भी थोड़ा सा एडिशन हो जाए तो और भी अच्छी बात है। फल किसे कहते हैं, जैसे आप इसका एग्जांपल है, अच्छा वो आप ज्यादा जानते हैं, मेरे हिसाब से फल जो आप लोग खाते हैं कभी कभार मिलता है तो वही फल, खाने वाला फल। तो कल भी जैसे बात की लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर दूध पिए खूब, जी हाँ वो बैलेंस कर लेता है, जितना सोडियम का नुकसान है उतना पोटेशियम का होना जरूरी है, उसको बैलेंस करता है, वो सेल लेवल पे बहुत जरूरी है। और दूध पिए तो कौन सा पिए, सेपरेटा दूध पिए, लो फैट पिए, स्किम्ड मिल्क पिए, और अगर ये नहीं मिल रहा, अमूल का 4.5% ही मिल रहा है, तो उसके ऊपर से मलाई बिल्कुल हटा के पिए। और मीट और एग तो यहां पे बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हैंडफुल ऑफ नट्स लाइक आलमंड्स और बादाम और अखरोट, ये बहुत अच्छा यूजफुल पाया गया है, बहुत अधिक नहीं, प्रतिदिन मुट्ठी भर 8-10 बादाम, थोड़े से अखरोट, तो वो हमको अच्छे प्रकार का फैट देते हैं जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है। एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये बढ़ाते हैं, तो इसलिए ये बुद्धि के लिए भी अच्छे हैं। और मिठाइयां जुबान के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन पेट के लिए और एब्डोमिनल गर्त के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां पे जाके ये जम जाती है। तो मिठाइयां कम करें तो बहुत ही अच्छा है। और जो फैट का कल जिक्र किया था, तेल कौन सा इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए, तो कल हमने जैसे कुछ तेलों का नाम लिया था। और मेन चीज ये है कि आज तक हम मानते आए कि मक्खन और देसी घी बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अब ये ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें सिद्ध हुआ है कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल रिच होते हैं, जो कि धमनियों में जाके डायरेक्टली डिपॉजिट होते हैं। तो अच्छे तेल वो ही है जो कि लिक्विड रहते हैं, सॉलिडिफाई नहीं होते हैं। तो उनमें से ये कुछ तेलों के नाम है। यहां पे वैसे विदेशों में मेडिटेरेनियन डाइट जो है स्वास्थ्य के लिए और हृदय के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। मेडिटेरेनियन एरिया वो है जो कि ग्रीस और इजिप्ट और इस एरिया के बीच में आता है। तो उसमें क्या वो यूज करते हैं, ऑलिव्स यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, तो वो बहुत अच्छा माना गया है। तो ऑलिव ऑयल लेकिन बहुत महंगा है। हमारे देश में मस्टर्ड ऑयल बड़ा अच्छा है, और उसके अलावा कैनोला ऑयल, सफोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इत्यादि भी बहुत अच्छे हैं कुकिंग के लिए। और जैसे कल हमने बोला था कि 3-6 महीने में इनको थोड़ा रोटेट कर लें तो अच्छा रहता है। जैसे कुछ साल पहले मस्टर्ड ऑयल में कुछ पॉइजनिंग हो गई थी, वो किसी कंटेमिनेशन से हो गई थी, तो अगर हम इनको रोटेट करें तो हानि होने की संभावना कम हो जाती है जी। तो ये बताया है हेल्दी फूड्स क्या हैं और अनहेल्दी फूड्स क्या हैं। ये व्यक्ति इतना बड़ा बर्जर खा रहा है, उसमें कितनी कितनी चीजें डाल रखी हैं, फ्राइड चीजें साथ में रखी हैं इसने, फ्रेंच फ्राइज, और साथ में कोई ड्रिंक व्रिंक रखी है, और अपना स्वास्थ्य दिखा रहा है। और जो हेल्दी चीजें हैं वो हम सामने देख रहे हैं, रंग बिरंगी चीजें खाने से बहुत लाभ है। इसमें विटामिन ए आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है, तो रंग बिरंगी चीजें स्वास्थ्य के लिए और भी बहुत अच्छी हैं। ये विटामिन ए, सी और ई, इनको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स कहा जाता है। तो ये जो हमारी धमनियों को साफ करने में भी बड़ा काम करते हैं, तो इसलिए भी फल का खाना बहुत लाभकारी है। फास्ट फूड किल्स फास्ट, जैसे कल बताया ही था, फास्ट फूड वो ही है ये जो वेस्टर्न फूड्स हैं। आजकल वेस्टर्न देशों की नकल में लगे हैं, लेकिन वेस्टर्न जो देश हैं वो अपनी बीमारी से, इन चीजों से सफर कर रहे हैं। आजकल अमेरिका में 30-40% लोग ओबीज हैं, ओवरवेट नहीं, ओबीज हैं, और उसका कारण सिर्फ यही है। मैकडॉनल्ड्स, वेंडीज और इतने सारे फास्ट फूड जॉइंट्स हैं वहां पे, और लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं, विद द रिजल्ट के ओबेसिटी का एक एपिडेमिक आ गया अमेरिका में। और ये सारे फूड जॉइंट्स हमारे यहां भी आ रहे हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में और सिटीज में, तो हमको इनसे बच के रहना है। तो ये एक खाने का पिरामिड है जो कि हेल्दी डाइट के बारे में हमको बताता है। तो इसमें देखिए, सबसे नीचे जो हम खूब खा सकते हैं वो है फल और सब्जियां, उससे ऊपर का है जो फूड ग्रेन्स हैं हमारे, जो हम आटा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो होल व्हीट की होनी चाहिए, मैदे की नहीं होनी चाहिए। होल व्हीट के बहुत फायदे हैं, फाइबर भी है और साथ में विटामिन्स वगैरह भी ज्यादा होते हैं। होल व्हीट खाना चाहिए। और उसके ऊपर है नॉन वेज है थोड़ा सा, और लो फैट डेयरी है। हमको दूध और दही का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे एक भाई है हमारे, दूध के डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं लेकिन दूध को अवॉइड करते हैं। और वो एक दिन हमारे पास आ गए, दूध दही ना खाने से दो नुकसान होते हैं, एक तो खून की कमी हो जाती है और दूसरा कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उनके जो हमने ब्लड लेवल्स करवाए, विटामिन B12 भी बहुत नीचे था और कैल्शियम और विटामिन डी भी बहुत नीचे थे। तो ऐसे दो तीन भाई आए हैं हमारे पास, और एक तो हमारे डॉक्टर ही थे जो कि वेजिटेरियन तो हम सब लोग हैं लेकिन दूध भी वो नहीं पीते, तो उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसका ब्लड प्रेशर से तो इतना ताल्लुक नहीं है लेकिन खून की कमी उससे हो जाती है, जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये लो फैट डेयरी जरूर लेना चाहिए। एक हमारे भाई आए थे, वो कहते कि दूध वूध मैं नहीं पीता क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, तो उन्होंने भी B12 की डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन उनको फिर हमने बताया कि दूध लो फैट डेयरी वाला पी लो आप, वो पीजिए आप। तो उसके ऊपर है नट्स वगैरह लिखे हैं और बीन्स हैं और ऑयल्स जो है हेल्दी ऑयल्स जो होते हैं वो है, और स्वीट्स जो है कम से कम लेना चाहिए, सबसे ऊपर स्वीट्स कम से कम लेना चाहिए। हाँ हाँ, कुछ एक व्यक्ति होते हैं जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंस होती है, मिल्क इनटॉलरेंस होती है, तो वो क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स में एक एंजाइम होता है जिसको लैक्टोज कहते हैं, जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करता है, मिल्क में होता है लैक्टेज, उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है लैक्टोज, वो कईयों में कम होता है। तो उनको क्या होता है जब भी वो दूध पीते हैं पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाती है। दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं दूध का, ऐसे व्यक्तियों को दूध की अगर दही बना लें तो सिम्टम कम हो सकते हैं, लेकिन अगर ये समस्या ठीक नहीं हो रही तो एक गोलियां आती हैं जो कि लैक्टेज एंजाइम प्रोवाइड करती हैं, तो उसके साथ मिल्क प्रोडक्ट्स ली जा सकती हैं। हाँ हाँ, पनीर भी ले लें तो अच्छा है। हाँ अच्छा है, अच्छा है, कुछ भी ना लेने से अच्छा है, पनीर भी अच्छा है। तो लेकिन अगर आपको आपको ऐसे ही सिम्टम होते हैं, हाँ बस ठीक है, लैक्टोज इनटॉलरेंस कुछ प्रतिशत लोगों में होती है, तो हाँ जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि दूध को मॉडिफाई करके खा सकते हैं, अनलेस मिल्क की एलर्जी हो तो अलग बात है। ये तो मुझे बात समझ नहीं आई, क्योंकि हड्डी के लिए ही तो दूध चाहिए। मिल्क कैल्शियम और विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स दूध ही है, और हड्डी जो है आपकी कैल्शियम और विटामिन डी के बिना तो एकदम यूं हो जाएगी और आप गिरेंगे और फ्रैक्चर होना निश्चित है, तो इसलिए ये बात सही नहीं है। वो तो फिर कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां ले सकते हैं आप, वो अलग चीज। भोजन में अधिकतर नहीं, मेन सोर्स कैल्शियम और विटामिन डी का यही है, और आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी के केसेस बहुत आ रहे हैं हमारे पास, तो और ये लेक बहुत ही जरूरी विटामिन है, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका नुकसान ना हो तो इसलिए मलाई पूरी उतार दीजिए, यदि स्किम्ड मिल्क हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। चूना तो बहुत ही क्रूड चीज है, जो बहुत क्रूड चीज है, उससे अच्छा है तो कैल्शियम की गोलियां ले लीजिए आप, कैल्शियम की गोलियां ले लीजिए। दूध में हल्दी डाल के पी लीजिए और अजवाइन डाल के पी लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। यदि आपको उससे बलगम में लग रहा है लाभ है तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये भी वैसे कोई ऐसे बलगम और दूध का है नहीं कनेक्शन, लेकिन ये माना गया है, हमारे घर में भी कई लोग मानते हैं, लेकिन मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वेट कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट, जितना वजन आपका ज्यादा उतना ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो वजन हमेशा नियमित करना ही चाहिए। तो क्या प्रिंसिपल है, 1 किलोग्राम ऑफ वेट लॉस कैन रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर बाय 2.5 और 2.4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो कि सिग्निफिकेंट लॉस है। और अगर आप 10 किलो ओवर वेट है तो आपका 20 मिलीमीटर तो यूं ही नीचे आ जाएगा, सो दवाइयां लेने से बच जाएंगे आप। सो वजन का कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक प्रिंसिपल है। और अचीव आइडियल बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, जैसे मैंने पहले कहा कि हर हाइट के मुताबिक वेट होता है, तो हाइट और वेट के चार्ट्स होते हैं और वो हम क्लिनिक में देख के बता देते हैं। और एक और बड़ी चीज है, मैंने कल आपको बताई थी बॉडी मास इंडेक्स, जो वेट का एक दूसरा नमूना है कि वजन कितने किलो, उसके नीचे रखी अपनी हाइट इन सेंटीमीटर्स, उसको कर दीजिए स्क्वायर। एक एग्जांपल मैंने जैसे दिया, अगर आपका वजन है 72 किलो, आप हैं 5'6" के, तो आपकी हाइट हो गई 1.65 मीटर है, उसको किया स्क्वायर, स्क्वायर करके 1.65 बन गया 2.62, 72 डिवाइडेड बाय 2.62 आ गया 27। और कितने को ओबीस कहते हैं, बीएमआई कितना हो तो ओबीस होता है, 25 से ऊपर हो तो ओवरवेट, 25 से 30 के बीच में, 30 से ऊपर चला जाए तो ओबीस है। तो ये 27 वाला बंदा जो कि मैं हूं, वो ओवरवेट में आ जाता है। तो हर व्यक्ति को अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लेना चाहिए और आइडियल के बीच में लाने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वेट कंट्रोल के बारे में है, अपना एब्डोमिनल गर्थ जानना। आज मैं एक इंची टेप लेके आया हूं, इसका बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य का आपका कितना कैटेगरी है उसको जानने में, ये इंची टेप को रखिए दो लेवल पे। एक रखिए नाभि से थोड़ा सा नीचे, नाभि को टच करते हुए, और देखिए कितना है। फिर रखिए अपना हिप्स के जो मैक्सिमम एरिया है उस पे मेजर कीजिए। ऊपर रखिए वेस्ट की हाइट, वेस्ट की विड्थ, और नीचे रखिए हिप्स की सरकमफ्रेंस, दोनों का रेशो देखिए। यदि आपका रेशो इससे ज्यादा है तो आप अनहेल्दी चल रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, आपको अपने मध्य प्रदेश का कुछ उपाय करना चाहिए। ये जो रेशो होती है, जो मर्दों में 1 से कम होनी चाहिए, 0.9 से कम हो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे यहां पे भी आप 36 हैं और यहां भी 36 है तो बहुत बढ़िया। और विमेन में ये 0.85 होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? ये दो प्रकार की ओबेसिटी होती है, एक होती है एप्पल शेप्ड और एक होती है पियर शेप्ड। जो एप्पल शेप्ड है वो हानिकारक है, उसमें क्या होता है कि फैट यहां पे इकट्ठा हो रहा है, फैट हमारे मध्य प्रदेश में आ गया ज्यादा। अगर निचले प्रदेश में चला जाए तो उसको पियर शेप्ड ओबेसिटी, वो पियर का शेप बना देती है। लेडीज में अक्सर पियर शेप्ड होती है, मेन में अगर एप्पल शेप हो जाए तो उनके हार्ट अटैक के चांसेस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं। इसका इतना रिलेशनशिप है हार्ट से। सो ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा, आप जानते हैं, ठीक रहना चाहिए। अब ये देखिए, ये डॉक्टर सचिन ने फोटो डाली है, मैंने नहीं डाली। ये एक पुलिसमैन साहब बैठे हैं और जो हमको होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और मेन चीज है कि इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मध्य ठीक रहे। शराब की बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपके जान पहचान में कोई हो तो इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और इसके 100 दूसरे नुकसान तो हैं ही। ये इसकी भी बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो बंदा अपने फेफड़े को भी जला रहा है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहा है और लो छुट्टी भी हो गई। अच्छा, जैसे कल हमने थोड़ा बहुत इसका जिक्र किया था कि 30 से 45 मिनट प्रतिदिन कम से कम सप्ताह में 5 दिन तो अपने आप को देने ही चाहिए। और जैसे हमने कल बात की थी, एरोबिक एक्सरसाइज बेटर है वजन उठाने वाली एनएरोबिक एक्सरसाइज से। तो 5 से 7 दिन कम से कम हफ्ते में 30 से 45 मिनट करना ही चाहिए। वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग नहीं कर सकते तो कम से कम वॉकिंग तो हर आदमी कर ही सकता है। वर्कआउट कर लीजिए, ट्रेडमिल पे कर लीजिए, और जैसे यहां पे कहा वेट लिफ्टिंग से बेटर है, इंक्रीज ग्रेजुअली। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज मैंने आपको बताया और कल आप में बड़ा उत्साह आ गया, चलो दौड़े भागे भागे भागे, और फिर ऐसे करने से छुट्टी भी हो सकती है। तो हमें इतनी जल्दी छुट्टी नहीं करनी है, ग्रेजुअली 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 बढ़ाना है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ाना है, क्योंकि अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज जो है वो हृदय के ऊपर ज्यादा लोड डाल देती है। अगर आप सैर शुरू कर रहे हैं तो पहले थोड़ी कीजिए, फिर थोड़ी बढ़ाइए, प्रतिदिन बढ़ाते जाइए, आपका स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा और आप कंफर्ट लेवल, अपने कंफर्ट लेवल के अंदर रहिए और कंफर्ट को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। यदि एक दिन हमारे एक डॉक्टर थे, उनको बड़ा जोश आ गया, वो ट्रेडमिल चला ली उन्होंने और ट्रेडमिल पे भागने लगे, 70 साल की उम्र थी उनकी, और ट्रेडमिल पूरी फोर स्पीड पे कर दी उन्होंने, और यूं गिरे कि उनकी हड्डी में उनकी लिगामेंट का भी फ्रैक्चर हो गया। तो इतना उत्साहित नहीं हो जाना कि एकदम से शुरू करना, ग्रेजुअली 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 इंक्रीज करना, तो उससे आपका स्टेमिना बहुत बढ़ता चला जाएगा। ये अगर आप जिम में जाते हैं तो बहुत सी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो लेकिन हम लोग सामान्य व्यक्तियों के लिए वॉक करना ही बहुत अच्छा है। ये भी, अरे ये दिखाइए, ये कौन सा पोस्चर है योगा का, ये जो बीच में है, ये भुजंगासन है, ये भुजंगासन है। तो हमारे यहाँ एक सुमंगला मैडम है, वो योगा सिखाती हैं, मैं श्योर हूं कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ योगा का होगा। तो योगा से भी ब्लड प्रेशर काबू में किया जा सकता है, अच्छा है, उससे मन को भी राहत मिलती है, और जब मन को राहत मिल गई तो ब्लड प्रेशर को राहत मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मैं जैसे आगे बताऊंगा कि मन में गड़बड़ तो ब्लड प्रेशर में गड़बड़ है ही है। तो ये भुजंग आसन कीजिए, थोड़े जॉगिंग कर लीजिए, मिलके वॉकिंग कर लीजिए, ये सब बहुत ही अच्छा है। जी वजन कम करने के लिए ही तो है ये, क्या करना है, सैर शुरू कर दीजिए बिना शर्माए, आपको अपने जैसे बहुत से मिल जाएंगे सड़क पे सैर करते हुए, तो आपको ये तो बहुत ही मुबारक की बात है, आपको बहुत ही मुबारक है, इनके लिए तालियां हो जाएं। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा काम किया है आपने, और इसी से आपको उत्साह बढ़ना चाहिए कि मैं और भी कर सकती हूँ। तो मैंने जैसे कल बताया था, इनटेक कम करनी है, आउटपुट बढ़ानी है। आउटपुट ये है, वर्जिश से होती है, व्यायाम से होती है, वॉक से होती है, वो आपकी आउटपुट है। जहां पे मसल आपके काम कर रहे हैं, मांसपेशियां काम कर रही हैं, उसमें जो है एनर्जी यूज हो रही है, तो वो आपके फैट के स्टोर में से जाएगी। और ये तो माताओं को ऐसे हो जाता है कि घर में बैठी बैठी काम करती रहती हैं और समझती हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन इतना काफी नहीं होता, तो वजन बढ़ जाता है। तो सैर करना बहुत आवश्यक है। वो भी ऐसे बहाना है, वजन ऑपरेशन के बाद कुछ दिन के बाद तो चलना शुरू करना चाहिए, वो बहाना लोग लगा लेते हैं। अच्छा आगे चलें। ओ ये देखिए, तनाव, तनाव, स्ट्रेस। अभी एक यहां पे जब हम बैठे थे, बहुत ही अच्छा भजन था, उसकी शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लगे कि बाबा हमको ऊपर से मतलब देख रहा है हमेशा, तो चिंता किस बात की। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मानते हैं कि बाबा देख रहा है तो चिंता किस बात की। मेरे विचार से जो चिंता करते हैं वो गधे हैं, कोई है तो नहीं गधा यहाँ, नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो चिंता करना तो एकदम व्यर्थ बात है। मतलब आपका ख्याल है कि आपको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? चिंता वही करता है जिसको विश्वास की थोड़ी सी ढीलापन है, उसका विश्वास परिपक्व नहीं है, वो चिंता जरूर करता है। बाकी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति चिंता नहीं करता है। और चिंता का ब्लड प्रेशर से क्या कनेक्शन है वो भी देख लेते हैं। चिंता ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाती है, ये भी एक सवाल उठ सकता है। चिंता का क्या मतलब होता है कि आप बिना मतलब सोचे जा रहे हैं, और वो जो चीजें हैं वो नेगेटिव थिंकिंग है, वो अपने आप को गिल्ट की फीलिंग है, या मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, इस प्रकार के जो विचार हैं वो आपको बार बार आए जा रहे हैं, आपका अपने विचारों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो उसको ही चिंता कह देते हैं। हाँ, मैं अभी चिंता पे ही थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। हाँ, सो चिंता आप, मुझे लगता है कि सभी ने अनुभव तो की है कभी ना कभी। तो यही होता है कि विचार आ जा रहे हैं, और मेरा क्या हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बार बार जब चलने लग जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि यहां के मसल्स में टेंशन हो जाती है, फिर पूरे दिमाग को पकड़ लेती है। तो ये क्यों हो रहा है? हार्मोन्स रिलीज होती हैं, चिंता हार्मोन्स को रिलीज करती है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन, इस प्रकार के कई चीजें हार्मोन रिलीज होती है। उनसे क्या होता है, नसें तंग हो जाती हैं। जब नसें तंग हुई, पाइप तंग हुई, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी मानी गई है। सो चिंता से दूर रहना बड़ा जरूरी है। अब ये है दवाइयां, इसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये तो प्योरली हमारे अधिकार में है, लेकिन कुछ जिक्र कर दूंगा इसका कि 6-7 प्रकार की मेडिसिन होती हैं, और कौन सी मेडिसिन किसको देनी है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि कई दवाइयां होती हैं कि शरीर में से नमक को भगाती हैं पेशाब के जरिए, कई दवाइयां होती हैं जो धमनियां जकड़ी हुई हैं उनको रिलैक्स करने के लिए या तो मसल को रिलैक्स किया जा सकता है, या जो हार्मोन्स को कम किया जा सकता है उसको रिलैक्स करने के भी कई तरीके हैं। सो वो सारी दवाइयां हम देखते हैं कि किस मरीज में कौन सी देनी है। और प्रिंसिपल ये है कि अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है तो स्टार्ट विद लो डोज, फॉलो द पेशेंट। लो डोज से कंट्रोल नहीं हुआ तो डोज थोड़ी बढ़ा दो, फिर उसको फॉलो करो, और एक दवाई से नहीं हुआ तो दूसरी टाइप की दवाई डाल दो, और फिर दो से नहीं हो रहा तो तीसरी डालो, तीसरी के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो थोड़ा रुको कि क्यों नहीं हो रहा। जब किसी पेशेंट को 3 से अधिक दवाइयां चल रही हैं तो उसी को कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो उस वक्त हमको सोचना चाहिए, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के कारण जैसे मैंने कल बताया थे, या तो मरीज रेगुलरली दवाई ले नहीं रहा, या नमक का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, या उसको चिंता हो रही है, या साथ में कोई और बीमारी भी है, तो उसको फिर हमको दूसरी थिंकिंग करनी पड़ती है, ध्यान से काउंसलिंग करना पड़ता है। अगर टेंशन है तो काउंसलिंग करना पड़ता है, नमक की काउंसलिंग करनी पड़ती है, फैट कम करने की, वजन कम करने की, कोलेस्ट्रॉल कम करने की, सारी काउंसलिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मोस्टली हम फर्स्ट विजिट में ही काउंसलिंग करते हैं, और रेजिस्टेंट हो तो उसको फिर बार बार भी करना पड़ता है। तो ये तो भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयां बताई गई हैं जिनके नाम हैं। उसके पश्चात ये डॉक्टर सचिन ने एक स्लाइड बहुत अच्छी डाली है, मेडिटेशन, जिसका हमने जिक्र किया ध्यान। यहां पे तो ध्यान हम लोग सब करते ही हैं, और ध्यान से पॉजिटिव थॉट्स भी आती है और अच्छी हार्मोन्स भी रिलीज करती है जिनको कहते हैं एंडोर्फिन. दीज आर कॉल्ड फील गुड हार्मोन्स. तो ये भी हमारे सारे सिस्टम को रिलैक्स कर देती है. आपने नोटिस किया ही होगा ध्यान में थोड़ा सा ध्यान लग जाता है तो सिस्टम पूरा रिलैक्स होकर उठते हैं हम. सो मेडिटेशन का बहुत ही महत्व है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है. बहुत सी ऐसी स्टडीज भी आ गई है. 90-100 ऐसे पेशेंट लिए गए, मेडिटेशन में बिठाया, बीपी कम आ गया. रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन. स्वामी विवेकानंद. राजयोग बहुत ही उत्तम प्रणाली है ध्यान में पहुंचने की. इससे सारा शरीर, मन, बुद्धि एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर काबू में आ जाता है. और ये अवश्य सुबह शाम तो करना ही चाहिए. मेडिटेशन के बेनिफिट्स बताए गए हैं. कितने बेनिफिट्स हैं? ब्लड प्रेशर लो करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल टेंशन, हेडेक और माइग्रेन, नींद अगर नहीं आती तो उसमें लाभ. माइंड को फ्री कर देता है, फ्रीज द माइंड फ्रॉम सेल्फ डाउट एंड इंटरनल चैटर. सबसे अधिक लाभ ये है. इंटरनल चैटर जो हमके अंदर चलती रहती है, वो क्या होगा, उसने क्या कहा, वो मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा अपमान हो गया, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये जो चैटर चलती रहती है ये भी मेडिटेशन से समाप्त होती है. फियर से मुक्ति चाहिए तो मेडिटेशन. एंग्जाइटी, चिंता, डिप्रेशन और पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर. तो ये एक साइंटिफिक स्टडीज हैं जिनका मैं बहुत जल्दी से बता दूं आपको कि उन्होंने पेशेंट लिए, उनको मेडिटेशन कराई और स्टडी किया कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई, एंग्जाइटी कम हो गई और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया सहज योग मेडिटेशन से. और ये एक कंट्रोल ट्रायल था, ये भी मेडिटेशन के ऊपर ही है. और ये एक पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूशन है रामदेव बाबा का. उन्होंने कुछ लोगों को लिया और उनको सिर्फ प्राणायाम और अपने श्वास के ऊपर ध्यान करने को बताया और उनमें भी पाया कि ब्लड प्रेशर नीचे आ गया. ब्लड प्रेशर पहले देखा और प्राणायाम के 10-15 मिनट के बाद देखा, बीपी कम आया हुआ था, वो भी अच्छा है. और राजयोग मेडिटेशन यहां पे तो सब करते ही है. हाँ, तो ये हमारे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स हैं सबको अच्छे स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी तो जाने का समय आ गया. कोई बहुत हॉट क्वेश्चन हो जिसके मन में रुक नहीं रहा हो तो एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वैसे तो साथ साथ जवाब देते ही रहे हम. बढ़ानी क्यों है? ना ना, क्योंकि देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज देता है. तो जितना आप फैट ज्यादा खा रहे हैं उतनी कैलोरीज तो अंदर जा ही रही है. कैलोरीज जाने का मतलब फिर आपको उतना दौड़ना भागना पड़ेगा और कैलोरी निकालने के लिए सिस्टम से. सो कम ही अच्छा है, कम ही अच्छा है. चाहे अच्छा तेल है लेकिन उसका इतना लाभ नहीं है, थोड़ा तेल काफी है. हाँ, जितना मतलब मिनिमम तड़के वड़के के लिए चाहिए उतना ही. क्या चीज? बहुत कम पेशेंट में ऐसे होता है कि हम कम कर पाए हैं दवाइयों को। बाबा राम जी यहाँ पे एग्जाम्पल है, 6 से 7 और मतलब 1 आ गया है, तो अभी आधी आ गई है। तो यदि आप अपनी जीवन शैली में बहुत अच्छा परिवर्तन ले आते हैं तो चांस है। लेकिन कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले को भूल नहीं जाना चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर कहा गया है। आपको ये नहीं बताएगा कि मुझे सिरदर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास। उससे पहले ही डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मेरा ठीक है, 2 रीडिंग ठीक आई है, अब मैं भूल सकता हूं। नहीं, हर कुछ महीने में जाके चेक करवाइए, कहीं बढ़ तो नहीं गया यार, देखना जरा ऐसा। किसका जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अच्छी नींद आए तो सारा सिस्टम आपका रिलैक्स हो जाता है। नींद ना आना तो एक बीमारी ही है जिसको इंसोम्निया कहते हैं, जो कि एंग्जाइटी से हो सकता है या डिप्रेशन से हो सकता है, और उसका इलाज होना बड़ा जरूरी। अगर इलाज नहीं कराना तो योग से भी अच्छी आ जाती है। या कईयों को बीमारी होती है, जैसे जैसे आदमी 50 साल की उम्र के बाद गया तो उसको प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है, तो प्रोस्टेट की वजह से दिन में रात में उठना पड़ता है पेशाब के लिए, तो कई बार नींद उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। अरे क्या बात कर दी आपने, यही तो हम कह रहे हैं, व्यर्थ सोचना तो है ही नहीं। चैटर को बंद करना ही तो है, ये जो चैटर चलती रहती ना हमारे दिमाग में, इसी को बंद जिसने कर लिया वो राजयोगी हो गया। वही राजयोगी है जिसके यहाँ पे साइलेंस आ गई, जहां यहाँ पे साइलेंस आई वो राजयोगी हो गया। तो जब तक हम वो चीज नहीं आते, हाँ जब तक चैटर चल रही है तब तक हम साधक हैं, जब चैटर समाप्त हो गई तो हम सिद्ध हो गए। मैं एक्चुअली आज 2-3 चार्ट लेके आया हूं कि कितनी मात्रा के खाने में कितनी कैलोरीज है, यदि आपको चाहिए तो मैं दे भी सकता हूं। अच्छा वो कैलोरीज मैं बता भी देता हूं, एक फार्मूला है। कैलोरी कंट्रोल, कल परसों हमारा लेक्चर था वहां पे ऑडिटोरियम में, तो डॉक्टर सचिन ने यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि कैलोरी काउंट करना चाहिए हमको, कितना मैं खा रहा हूं, बिना सोचे समझे नहीं खा रहे। तो कैलोरी काउंट, हमें को कितनी कैलोरीज चाहिए वो हमारी हाइट और वेट के मुताबिक होता है और हमारी एक्टिविटी के मुताबिक होता है। जैसे कोई एथलीट है, मैराथन रनर है, मिल्खा सिंह है, उसको चाहिए 3000 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन। वो मिल्खा सिंह की पिक्चर आई, वो देसी घी पी रहा है क्योंकि उसको भागना है, अभी कितना भागना है, तो उसको सूट करता है वो, 3000 से 4000 कैलोरीज चाहिए उसको। लेकिन साधारण व्यक्ति जो कि परिश्रमी थोड़ा है, उसको 2000 से 2500 कैलोरीज, बच्चों को जो ग्रोइंग है उनको भी 2500 कैलोरीज, लेकिन जो कम काम करने वाले लोग हैं उनको 2000 से कम कैलोरीज 1500-1600 चलेंगी, और जो बिल्कुल ही चलते फिरते नहीं है उनको 1000-1200 भी चलेंगी, और जिनको ओबीज है, वेट रिड्यूस करना है, उनको भी हम 1000-1200 कैलोरीज की डाइट एडवाइस करते हैं और फिर भेज देते हैं डायटिशियन के पास, और डायटिशियन बताती है कि आप ब्रेकफास्ट में ये लीजिए, लंच में ये लीजिए, स्नैक लेना है तो ये लीजिए, डिनर में लेना है तो ये लीजिए, तो पूरा प्रोग्राम बना के दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अरे बाबा यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं आप लोग, तेल वाली चपाती बंद ही कर दीजिए ना, क्या जरूरत है। अच्छा बाय द वे, हम लोग वहां पे 2 चपाती लेते हैं, उसको खास बोलते हैं कि सूखी देना, खाम खा की कैलोरीज अंदर डालने की क्या जरूरत है। हाँ तो आज तो 100-150 लोगों को तो अवेयरनेस आ ही गई, कल से आपकी तेल की कंजम्पशन कम हो जानी है, नमक की कंजम्पशन कम हो जानी है, कितना लाभ है, कितना लाभ है। हाँ, सब्जियों में भी तेल कम हो, नमक कम हो, मतलब संस्था का भी लाभ है। हाँ, ये भी कल भाई ने एक सवाल यहाँ पे रेज किया था, डॉक्टर सचिन ने इसके बारे में बताया।
लो ब्लड प्रेशर जो है वो ऐसी चीज है कि वो इमरजेंसी भी हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर के कुछ कारण हैं। एक तो अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वहां पे बहुत सारा खून बह गया तो बीपी लो हो जाता है, या किसी को डायरिया हो गया, बहुत सारी वॉमिटिंग हो गई तो बीपी लो हो जाता है। तो ये सारी जो है ना, ये इमरजेंसीज में आता है कि जिसमें बीपी लो हो जाता है और मरीज को बिल्कुल चक्कर आना लगता है या बेहोश भी हो जाता है, उसको तो जाकर आईसीयू में एडमिट करके बहुत सारा मतलब फ्लूइड देना पड़ता है। अगर बहुत सारा खून गया है तो खून चढ़ाना पड़ता है, ये एक प्रकार का है। दूसरे कुछ लोग होते हैं कि जिनका बीपी लो होता है, खासकर भारतीय नारी, इनका जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनका विशेषतर ब्लड प्रेशर जो हमने इधर नॉर्मल बताया 120-80, पर फीमेल्स में ब्लड प्रेशर नॉर्मल कभी कभी 100 ऊपर का, नीचे डायस्टोलिक 60, और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। किसी किसी का 90 ऊपर का, नीचे का 60। तो लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है कि इसमें अगर आपको लो ब्लड प्रेशर लो है पर कोई शिकायत नहीं है तो कुछ नहीं करना है, अगर कोई तकलीफ नहीं है उससे तो कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से इस सभा में भी कई लोग होंगे जिनका बीपी हमेशा लो रहता है 100-60 और पहले से ही उतना है वो, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। पर यदि बहुत फ्लूइड लॉस हुआ है, बीपी कम हो गया है, या कभी कभी ऐसा होता है एक ब्लड प्रेशर का मरीज है जिसको बीपी की गोलियां चालू है, अगर उसका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाए तो वो सोचने वाली बात है, उसको सब सिम्टम्स चालू हो जाएंगे, चक्कर आना, गिरना, बहुत सारा मतलब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है वैसे लो ब्लड प्रेशर के भी सिम्टम्स है। पर यदि बीपी आपका 90 है, 100 है ऊपर का, 90 या 100 और नीचे का 60-70 है और आपको कोई शिकायत नहीं है तो उसमें कुछ नहीं करना है। कोई कोई मरीज को हम अगर बीपी लो है तो एक्स्ट्रा सॉल्ट की एडवाइस करते हैं। कुछ कुछ हार्ट की बीमारी है जैसे एमवीपी, माइटल वाल्व प्रोलैप्स, फीमेल्स में ज्यादा होती है वो, ये मेल्स में भी होती है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा सॉल्ट ज्यादा ले, वो कुछ कुछ ही लोगों में। मैक्सिमम लोगों में लो ब्लड प्रेशर जो होगा ना वो असिम्टोमेटिक होंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी उससे, तो कुछ नहीं करना है उसके लिए, जो चल रहा है डाइट वैसा ही चलने देना है। तो लो ब्लड प्रेशर कोई मतलब अगर बहुत ज्यादा लो हो जाए, जैसे बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, तो फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट से कम हो जाता है। हाइपोटेंशन, हम इसको शॉक बोलते हैं, हाइपोवॉलेमिक शॉक, किसी को डायरिया हो गया 10 बार 20 बार 50 बार हाफ सेंचुरी ऐसे हो जाता है कभी कभी बहुत बार डायरिया हो गया तो वो बीपी लो हो जाता है, वो टाइम पे एडमिट करके फ्लूइड देना पड़ता है, पर जनरली कुछ नहीं करना है उसमें। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो फिर हमको कारण ढूंढना पड़ेगा, और कुछ शरीर में कुछ बीमारी है क्या उसका। और दूसरी एक बात डॉक्टर चावला सर बता रहे थे, ऑलिव ऑयल, आपने किसी ने देखा है ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल, हाँ, जब मैं नया नया डॉक्टर बना था तो जो भी मरीज मिलते थे पकड़ पकड़ के उनको बताता ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, आप ऑलिव ऑयल खाओ। तो जब मैं ऐसे सबको बताता था, एक दिन एक मरीज आया तो मैंने उसको बोला आप ऑलिव ऑयल खाया, तो बोले नहीं। मैंने बोला आपको बोला था ना, तो बोले आपको पता है कितनी कीमत है? मैंने बोला नहीं, 400। तो बोले आप दोगे पैसे? वो बहुत कॉस्टली है, वो है सबसे बेस्ट ऑलिव ऑयल, एक किलो 400 रुपए का है वो, तो वो एक बात है। तो इसके लिए दो प्रकार के ऑयल, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। विजिबल मतलब जो आपको दिखता है ऊपर से हम जो डाल रहे हैं, एक होता है इनविजिबल ऑयल, जो भी सब्जियां है उनमें थोड़ा बहुत रहता ही हो, नेचुरली रहता है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि बिना ऑयल के भी सब्जी बनाने की बहुत सारी विधियां है, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं डालना और उससे भी सब्जियां बनती है, उसके भी आप जाओगे तो बहुत सारी किताबें भी है उसके बारे में, तो वो भी है। इसके लिए ऑयल कम से कम, नमक कम से कम, कोलेस्ट्रॉल जो तेल, घी, घी ये मक्खन ये सब कम से कम लेना है। और कोई सवाल? हाँ हाँ जी। और वॉकिंग, एक वॉकिंग के बारे में बताया, वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है सबसे बेस्ट, सबसे सस्ती, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, उसके इतने सारे फायदे हैं, सर ने तो बहुत सारे गिनाए हैं, पर एक फायदा मैं और एक बताऊंगा। एक किताब है इमोशनल क्वेश्चन करके एक किताब है, उसमें जो ऑथर है वो लिखता है कि एक बार उसका, वो जब 18 साल का था, ऑथर लिखता है कि जब वो 18 साल का था उसका झगड़ा हो गया घर पे उसके माँ बाप से, उसने बोला मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, और घर छोड़ के निकल गया पैदल, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर, जब ऐसे चलना चालू हो गया अकेला, और फिर चलते चलते उसको लगा मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, गलती तो मेरी है। मतलब उसको अपनी गलती रियलाइज हो गई। तो ये एक दूसरा एक फायदा है, माइंड हमारा शांत हो जाता है, हमारी जो ग्रहण शक्ति, विचार शक्ति है वो और तीव्र हो जाती है, हम अपने आप को ज्यादा देख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, एकांत में हम जाते हैं। तो ये जैसे एक और एक फायदा है उसका। तो अगर और किसी को कुछ प्रश्न है, कैलोरीज के बारे में डाइटिशियन आपको ज्यादा बताएंगे। दो मिनट बाबा को याद करेंगे।